إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات वो लोग बेशक जिन्होंने आजमाइश में डाला, फितना क्या है? आजमाइश। और फितना असल में किस चीज को कहते हैं? सोने को जब आग में तापा जाता है और उसका खरा खोटा अलग अलग किया जाता है तो उसको फितना कहते हैं। तो आग में जलाया जाना तो जलाने का भी माना है, और अलग अलग वो कर दिया गया, उसको प्योर कर दिया गया ना, तो फितने में डाल के खरा खोटा अलग अलग हो जाते हैं। फितना इसीलिए टेस्ट के लिए आता है, आजमाइश के लिए आता है। अल्लाह ताला आजमाइश नहीं डालता ताकि खरा खोटा अलग हो जाए, और जलाने के लिए भी आ गया। जिन्होंने जलाया मोमिनों को, मर्दों को भी और औरतों को भी, और जिन्होंने आजमाइश में डाला मर्दों को और औरतों को, तो दोनों बातें इसके अंदर आ गई। और मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को दोनों अलग अलग क्यों कहे गए? इसलिए कि मोमिन मर्दों को डिफरेंट तरह से आजमाइश में डालते हैं ये लोग, और औरतों को डिफरेंट तरह से आजमाइश में डालते हैं। औरतों के लिए डिफरेंट तरह की काम किए जाते हैं, मर्दों के लिए डिफरेंट तरह के काम किए जाते हैं। मसलन है कि मर्दों के लिए कोई औरत फितना बन सकती है, और वो उसके जरिए आदमियों के ईमान को यानी उससे उससे महरूम कर देते हैं। ये औरतों के लिए उनका पर्दा हिजाब बन सकता है, मर्दों के लिए उनके कमाई बन सकती है, उनकी जॉब बन सकती है। तो मर्दों और औरतों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से जिन्होंने आजमाइश में डाला, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ले लें जो वाक्या गुजरा है, तो जिन्होंने जलाया इनको या इनको भी आजमाइश में डाला, थुम्मा लम यतूब, फिर अगर वो तौबा नहीं की उन्होंने। अब देखिए ये बहुत अहम है, लम यतूबू सुम्मा लम यतूबू, फिर यानी अल्लाह ताला हमको चांस देता है, चांस देता है। सुम्मा में ना तराखी है, तराखी मतलब है कि डिले है, उसके बाद जैसे हम कह देते हैं ना उसके बाद, फिर कई तर्जुमा करेंगे लेकिन उसके बाद उसमें यानी थोड़ा फा में, फा छोटा है तो इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन सुम्मा में ज्यादा टाइम है। तो ये नहीं कहा गया इनल्लदीन फतरुल मुमिनीन वल मुमिनाति फलहुम अदाबु जहन्नम वलहुम अदाबुल हरीक, ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया सुम्मा लम यतूबु, फिर अल्लाह ताला उनको चांस देता है कि वो अपने आप को दुरुस्त कर दें, लेकिन वो फिर भी नहीं करते, तो फिर है उनके पर, नहीं उन्होंने तौबा की। इसका मतलब इनके पास भी तौबा का चांस है। जी हाँ, अल्लाह ताला ने अबू जहल को भी तौबा का चांस दिया, अबू लहब को भी तौबा का चांस दिया, लेकिन ना जो फिर भी ना तौबा करें, फिर उनके लिए है अजाब जहन्नम और अजाब हरीक, फिर उनके लिए है वो अजाब हरीक जलने का, हरका आग लगा देने को कहते हैं। जहन्नुम का अजाब अलग है और आग का अजाब अलग है। एक जहन्नुम में बहुत सारे अजाब भी हैं, जहन्नुम में तरह तरह के अजाब हैं, मिसलन प्यास का है, भूख का है, और भी कई तरह के अजाब हैं, जानवर काट रहे हैं उनको, ऐसे किस 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 किस्म के अजाब हैं। जहन्नुम जहनाम से है जिसका माना है टॉर्चर चैम्बर, टॉर्चर चैम्बर में वो होंगे तो जिसमें तरह तरह के टॉर्चर्स होंगे, और हरीक तो आग में उनको डाल दिया जाएगा। लेकिन इनके लिए आप सोचें कि इनके लिए भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, इनको भी अल्लाह ताला चांस देता है, इनको भी बताया गया कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, इतने घिनौने जुर्म करके भी चांस अल्लाह ताला ने दिया, और ये हर गुनाहगार के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली। ये सुम्मा लम यतूबू ना होता ना, तो फिर तो ये था कि जिन्होंने किया था बस, अब उनके लिए सिवाय जहन्नुम के और कुछ नहीं। लेकिन इससे पता चला कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी है कि वो ऐसों को भी चांस देता है जो मोमिनों को जला रहे हैं, और जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, उनके लिए भी। तो कोई इस कुरान को पढ़ के तो देखे और देखे कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी है, कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए भी दरवाजा खुला रखा और उनको भी दुत्कारा नहीं। उलिया इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कह दीजिए है मेरे बंदो जो अपनी जानों के ऊपर इसराफ कर चुके, जो हद से बढ़ गए, जिन्होंने जुल्म कर दिया अपनी जानों पर। ला तकना तो मेरा रहमत इल्ला, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीया, वो सारे ही गुनाहों को माफ कर देता है, वो माफ करने वाला है। और माफी के लिए कोई शर्त नहीं अल्लाह ताला ने लगाई, सिवाय एक शर्त के कि इंसान उस गुनाह को छोड़ के पशेमान हो जाए, छोड़े उस गुनाह को और पशेमान हो जाए कि मैंने क्यों, शर्मिंदा हो कि मैंने क्यों किया, रिग्रेट करे उसके ऊपर। और वो ये चाहे कि मैं काश मैं इसको ना करता, वो चाहे कि काश वो दिन आ जाए कि मैं दोबारा, मुझे चांस दिया जाए, मैं कभी भी ना ये करूं। उसके अंदर ही ऐसी निदामत हो, ऐसी पशेमानी हो, अंदर ही अंदर वो अपने आप को ये सोच रहे मैंने क्यों ऐसा कर दिया। वो निदामत होनी चाहिए और इंसान उसको छोड़ दे, यानी निदामत इतनी होगी तो छोड़ेगा ही, तो निदामत है ना, तो कभी भी नहीं उसमें दोबारा जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया तुम अपना सारा माल दोगे तो फिर हर गुनाह के बदले तुम इतने रोजे रखो, हर गुनाह के बदले तुम इतनी नमाजें पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। बस तौबा सच्चे दिल से। तो मुख्तलिफ तरीकों से जिन लोगों ने ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को, ये सब मतलब औरतें भी आजमाई जाएंगी, औरतों के ऊपर भी आजमाइश आएगी, औरतें भी ये ना सोचें कि वो इससे बच जाएंगी, उनको भी तरह तरह की में भी अजियतें दी जाए, में भी किसी तरह, चाहे जुबान से कोई अजियत दे रहा है, चाहे कोई जुल्म सितम ढा रहा है, चाहे वो कोई हाथ से मार रहा है। औरत कमजोर होती है ना, तो वो जल्दी फौरन ही भूल जाती है। वो पता है दज्जाल के पीछे सबसे ज्यादा औरतें होंगी, सबसे ज्यादा औरतें, इसी वजह से जहन्नुम में भी सबसे ज्यादा औरतें ही होंगी। बड़ी जल्दी वो अपना ईमान खो देती हैं। तो अल्लाह अकबर, अब ये सोचे, इसको वैसे समझे कि काफिर तो ईमान वालों को फितने में डालते ही हैं, बास जगह पे मुसलमान भी मुसलमानों को आजमाइशों में डालते हैं, मुसलमान भी मुसलमानों से ऐसी बातें निकलवाते हैं कि ये क्या है पहले, फिर उसके बाद तो ये छोड़ेंगे। कहा जाता है सीरिया के अंदर लोगों को इस तरह कहा जाता था, अस्तग़फिरुल्लाह। तो फितने तो आएंगे, आजमाइशें तो आएंगी, और अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो दूसरों को आजमाइशों में डालते हैं ऐसी कि वो तंग आके अपना दीन ईमान ही खो दें, उनके लिए भी देखो कैसा अजाब रखा है अगर वो तौबा नहीं करते तो। और अजाब जहन्नुम अलग है, अजाब हरीक अलग है। कहा जाता है कि कुफर के लिए अजाब जहन्नुम है, और जो उन्होंने फितने में डाला उसके लिए अजाब हरीक है, तो डबल सजा है उनके लिए। और बास कहते हैं कि अजाबुल हरीक जो है एक और जगह जहन्नुम में जो बहुत सख्त है। बास कहते हैं दो तरह की सजाएं हैं उनके लिए, एक आग का अजाब है और एक जमहरीर का अजाब है जो सख्त सर्दी का है, तो यानी उनके लिए डबल अजाब हो गया। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, वो लोग जिन्होंने ईमान लाके साले अमल किए। और याद रखें ईमान और साले अमल दो अलग चीजें नहीं है, ईमान का ही नतीजा है कि इंसान साले अमल करता है, ऐसे नहीं कि ईमान एक अलग चीज और साले अमल तो कहीं नजर आता ही नहीं। बस ईमान ईमान, हम ईमान के तो दावे करते हैं, ईमान के दावे तो मुनाफिकीन ने जितने किए ना, आप सूरह मुनाफिकून में पढ़ भी सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी बातें सुन लो तो इतनी खूबसूरत है कि आप उनकी बातों से मुतासिर हो जाए। तो ईमान के दावे तो करना बहुत आसान है, और मुनाफिकीन इसमें सबसे ज्यादा अच्छी तरह ये बात कर पाते थे। तो अगर ये खूबसूरत बातें करने का ही नाम होता ईमान, तो फिर तो मुनाफिकीन सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाले होते, लेकिन वो दरकल असफल में होंगे मिनन्नार। तो ईमान और अमले साले अलग चीजें नहीं है, ईमान होगा तो लाजमी है कि अमल आएगा। कैसे हो सकता है इंसान के पास ईमान हो कि एक दिन कयामत का है और वो अमल ही ना कर सके? कैसे हो सकता है कि उसका ईमान हो कि एक अल्लाह है जो मुझे देख रहा है और हर वक्त मुझसे बाखबर है, और वो फिर भी वो काम करे कि शैतान भी सोचे कि मेरे से भी आगे बढ़ गया? फिर भी वो दलेर हो, फिर भी वो उसको कोई फर्क ना पड़े। तो साले अमल ईमान का नतीजा है, उनके लिए लहम जन्नात, उनके लिए जन्नतें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी फौज वो चीज है कि जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, और जिस शर से बचना चाहते हैं, जो मतलूब है ना वो मिल भी जाए, जिसकी चाहत है आपको, और शर से बच भी जाए। यानी और ये देखे ना कि हमारा मतमाए नजर क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है कि हम जहन्नुम से बच के जन्नत में जाएं। तो फौज में वो कामयाबी, एक कामयाबी तो ये भी है ना कि भाई ठीक है कामयाबी हो गई, जहन्नुम को चखा फिर उसके बाद जन्नत में गए तो कामयाब हो गए, लेकिन एक है वो कामयाबी जिसको फौज कहते हैं, कि जिसके अंदर इंसान जो उसका मतलूब है वो पा ले, और जिसे वो बचना चाहता है उसे बच जाए। और ये बड़ी कामयाबी है जिसको अल्लाह ताला ये अता फरमा दे, ये जन्नत जिसमें नहरें बह रही हैं, और जहन्नुम से बचा ले। अल्लाह अकबर। तो कामयाबी और नाकामी के यहां पर आपको क्राइटेरिया मिल गए कि कामयाबी तो ये है, चाहे साले अमल करने में इंसान को मुश्किल आई, लेकिन वो डटा रहा, उसके ऊपर चलता रहा, इस्तकामत से चलता रहा, तो ये वो चीज पालेगा, जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, ये कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं कि आपने लोगों को राजी कर लिया, ये कामयाबी नहीं है कि सारे आपसे खुश हो रहे हैं और आपकी तारीफें कर रहे हैं, ये कामयाबी नहीं कि आप बहुत मालदार बन गए हैं, ये कामयाबी नहीं है कि आपके ऊंचे ओहदे मिल गए हैं, आपकी जॉब में तरक्की मिल गई है। कामयाबी असल ये है, जो फौजुल कबीर है वो ये है कि इंसान को ये जन्नत का ठिकाना मिल जाए बगैर जहन्नुम देखे, जैसे सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, ये जो जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो ही कामयाब है। तो लेकिन उसके लिए ईमान और साले अमल जरूरी है। आमाल की कमाई अगर नहीं की इस जिंदगी के अंदर, तो इसके बगैर नहीं जन्नत मिल सकती। कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है कि कुछ भी ना करोगे आप जन्नत में ही जाओगे, क्योंकि आपने मुंह से कलमा जो बोल दिया, ये भी तो कहीं लिखा होना चाहिए ना, वो दिखा तो दे। अगर इंसान को साले अमल के रास्ते में रुकावटें भी आती हैं लेकिन वो चलता रहता है, अगर इंसान को ताने भी सुनने पड़ते हैं लेकिन वो चलता रहता है, अगर इंसान को मुश्किलें भी आती हैं लेकिन वो चलता रहता है, तो कब तक है? कितनी जिंदगी पालोगे? 60, 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल? उसके बाद तो खत्म हो ही जानी है ना। तो 100 साल की मुश्किल उठा के अगर तुम्हें हमेशा की राहत मिल जाए तो कामयाब ही कामयाब हो, ये सौदा नफे का ही है। अब देख लें, हम तो न्यूज सुनते हैं ना और भूल जाते हैं। अब कितनी कितनी हमने न्यूज सुनी, फलां के साथ ऐसे हो गया, उस जगह पे लोगों को जला दिया गया, उस जगह पे, ये एक दफा नहीं दुनिया में हुआ, ये जो जलाए जाने का लोगों के साथ हुआ, ईमान वालों के साथ हुआ, ये एक दफा नहीं हुआ, ये कई दफा हुआ कि ऐसा हुआ दुनिया के अंदर। लेकिन याद रखें, हम भूल जाते हैं उस न्यूज को पढ़ के या उसको सुन के, लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता। अल्लाह के यहाँ उनका वो प्रिजर्व होता है, उनका अजर, और अल्लाह ताला के यहाँ इनका भी लिख दिया गया जो जिन्होंने लोगों को फितने में डाला था। आप देख ले, वाशी ने हजरत हमजा को शहीद किया लेकिन तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता खुला रखा था। अबू सुफियान सारी जिंदगी दुश्मनी करते रहे लेकिन उसके बाद फतह मक्का पे मुसलमान हो गए, अल्लाह ताला ने उनके लिए दरवाजा खोला। हजरत इकरमा अबू जहल के बेटे हैं, सारा वक्त मक्की दौर के अंदर उनका किरदार क्या रहा, इस्लाम दुश्मनी का, लेकिन अल्लाह ताला ने जब दरवाजे खुले रखता है तो कोई पता नहीं किस वक्त कौन वापिस पलट है। अल्लाह अकबर। और नहीं कोई पलटता तो दुनिया में जिन्होंने लोगों के लिए आगें जलाई, चाहे एक मानवीय आग लगाई भी हो, वैसे आग में कोई कूदने को कह दे तो वो नजर आती है, लेकिन कई लोग दुनिया में लोगों की जिंदगियों में आग लगा देते हैं, उनको बेचैन करके, उनको मुश्किल में डाल के, उनको परेशान करके, हर वक्त उनके लिए एक मुसीबत खड़ी रखते हैं, उनकी ये दुनिया की आग खत्म हो जानी है, आखरत की आग कभी नहीं खत्म होनी, वहां पे जलते रहना पड़ेगा, उसकी जलन कभी नहीं खत्म होगी। और इसी तरह ये जो ईमान और साले अमल करके हम ये जितने वक्त में कर रहे हैं ना, अगर आज हम ये मुशक्कत उठा रहे हैं या आज हम इससे गुजर रहे हैं कि हमें कोई मुश्किल आती है इस रास्ते में, तो ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन इसका अजर हमेशा के लिए बाकी रहेगा। इसी तरह गुनाह है, गुनाह की लज्जत थोड़ी देर की है, वो लज्जत आज पालोगे ठीक है, आपको उसमें बड़ा मजा आ जाएगा, दिल करता है ये करने का वो करने का, वो इसका शौक है, इसकी मेरी खुशी है, फलांग मेरी ये, आज कर लोगे इसका मजा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्या है, इसका गुनाह कहाँ तक भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा किधर तक भुगतनी पड़ेगी, कहीं कब्र है, कहीं हशर है, कहीं उसके बाद की सजाएं मौत के वक्त से ही शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला भूलता नहीं है, हम भूल जाते हैं, हमने ताने दे के हम भूल गए, लोगों को सता के हम भूल गए, अजियतें दे के हम भूल गए, अल्लाह ताला की डिक्शनरी में कोई भूलने वाली चीज है ही नहीं। इन्ना बतशा रब्बी का ला शदीद, याद रखो अल्लाह की जो पकड़ है ना बहुत सख्त है। अब देखिए यहाँ पे बतश कहते हैं जकड़ने को, एक होता है पकड़ना और एक होता है जकड़ना, जकड़ने में होती है ना आपको शिद्दत महसूस होती है कि जकड़ना कैसा होता है, किसी ने जोर से पकड़ लिया, और फिर उसके बाद बतश इटसेल्फ एक सख्त पकड़ है, उसके ऑन टॉप ऑफ इट ला यकीनन उसने और शिद्दत पैदा की थी, उसके बाद शदीद का लफ्ज भी है, बहुत शदीद है, बहुत शदीद है। यानी तुम ये ना सोचना कि आज छोड़े जा रहे हैं अल्लाह ताला और आज कोई पकड़ने वाला नहीं, आज कोई सुनने वाला नहीं, बजाहिर तो ऐसे ही लगता है ना कि कोई नहीं जो सुनवाई करे, ये तो राज है, यहाँ पे अंधेर नगरी है, यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं, मजलूम कराता जा रहा है और उसकी चीखें हैं जो इतनी बुलंद है सारी दुनिया सुन रही है, फिर भी कोई भी उसका पुरसाने हाल नहीं, और बच्चे भूखे बिलक बिलक के मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई कई जगह तो ऐसी हैं जिनका हम कहीं सुनते भी नहीं, ना कोई न्यूज में है ना कोई कहीं है, किसी पता ही नहीं चलता, छुपे भी है ना बातें, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है लेकिन किसी को भी नहीं पता, कोई न्यूज में आने वाली चीज नहीं है। कमजोरों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि एक अल्लाह ताला देखने वाला है। फिर ईमान कहाँ गया, किधर है वो ईमान, ढूंढ के लाने से भी नहीं मिलता, किधर है ईमान, जो जो क्लेम था कि एक अल्लाह है, और एक अल्लाह है सिर्फ काफी नहीं, जब अल्लाह ताला को मान लिया कि वो एक रब है वो एक इला है, तो वो देखता भी है सुनता भी है जानता भी है बाखबर है, उसकी पकड़ का एहसास खत्म हो गया क्या? वो पकड़ता है तो बहुत शदीद पकड़ता है, वो ढील दे दे तो जब तक चाहे ढील दिए रखे, लेकिन जब वो पकड़ लेता है तो फिर कोई बच के जा नहीं सकता, ना जा उसके तहम्मुल पर कि बड़ बेढब है पकड़ उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका, उसके तहम्मुल पे ना जाए, कि अल्लाह ताला का तो हिल्म है ना, ये वो अल हलीम है, उसका हिल्म है कि वो चांस देता है मौके देता है, फौरन नहीं पकड़ता, पर इंसान धोखा खा जाता है और सोचता है कि बस ठीक है अगर आज नहीं मैं पकड़ा गया तो अब तो पकड़ा जाना ही नहीं, मुझे इतनी दफा मैंने कर लिया, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, पर ये चीज उसको दलेर कर देती है, वो भूल जाता है कि जब फिर अल्लाह की पकड़ आती है ना तो वो इतनी सख्त होती है कि फिर कौमों की चीखें निकल गई, अल्लाह ताला फरमाता है वो कहते उस वक्त वो बोलते हैं, सूरह आराफ शुरू होती है तो ये बात आई कि उस वक्त जब अल्लाह ताला की पकड़ उनके ऊपर आ गई तब वो बोले चीख चीख के बोले हम भी जालिम थे, हम भी जालिम थे, हमने गलत किया, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, फिर वो छोड़ता नहीं है, फिर कोई कहे कि हाँ हमने जुल्म किया, हम मान जाते हैं कि हमने जुल्म किया, तब कोई फायदा नहीं है मानने का, अल्लाह की पकड़ सख्त है, उसकी शिद्दत से पकड़ने को सोचो और वो कहाँ से आ जाए ये भी इंसान को नहीं पता चलता, इंसान को पता नहीं चलता शदीद, लेकिन होगी इंटेंसिटी उसकी बता रही है, और इसमें अल्लाह ताला का जलाल है, और उनके लिए जो मजलूम है और जो सताए जा रहे हैं उनके लिए तसल्ली है, घबराओ नहीं, अल्लाह की पकड़ है, और वो फिर जब आएगी ना तो फिर किसी को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इन्नहू हुवा युबदी हुवा युईद, बेशक वो ही है जो पैदा करता है, इब्दा करता है, इब्दा मतलब इनिशिएट करना, पैदा करना, वो युईद और लौटाता है, इआदा करना, इआदे से। ये अब सारी आयात जो है ना पिछली आयात की ही तफसीर है, कि जब कहा गया ना ये आयत नंबर 10 की तफसीर ही आप पढ़ रहे हैं 12 में, कि अल्लाह की पकड़ बहुत फिर शक्ति है, बहुत सख्त है, और कुरैश को भी कह दिया गया तुम भी सुन लो, और वो ये अगर आज उसने पैदा किया है तो कल को वो उठाएगा भी, और इस पर कादिर है। उसने पहलों को भी पकड़ा और दोबारा भी वो पकड़ेगा, और अल्लाह ताला दुनिया में चीजों को लाता है और दोबारा इनका आदा भी करता है, दोबारा भी लेकर आ जाएगा। और ये भी माना है इस दुनिया में भी अल्लाह ताला आजाद दे देता है और आखरत में भी उसको इआदा कर देगा, तो ये सारे माने हैं इसके, जिंदा करने के भी माने, सजा देने के भी माने। देखिए कितनी कौमों की सजाएं हुई इसी दुनिया में, वो पकड़े गए ना अपने जरायम पे, वो तो हमने देखा, आखरत को तो देखा नहीं ना अभी, लेकिन इसी से सोच लें कि आखरत में क्या होगा, तो बास बादल मौत की तरफ भी है ये, कि अल्लाह ताला दोबारा खड़ा करेगा, सजाएं देने के ऊपर भी है। वहुवल गफूरुल वदूद, और वो गफूरुल वदूद भी है, गफूर भी है और वदूद भी है। गफरा कहते हैं किसी चीज को कवर कर देना, कंसील कर, अब कंसीलर लगाते हैं ना खवातीन को तो ज्यादा कंसीलर का होता है, कंसीलर से आप क्या करते हैं, कवर कर देते हैं अपने उन दाग धब्बों को जो चेहरे पे होते हैं। तो अल्लाह ताला गुनाहों को कवर करने वाला है, अल गफूर है, वो कवर कर देते अगर किसी को पता ही ना चले, वरना अल्लाह ताला एक्सपोज कर देना तो दुनिया में भी इंसान किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। वो बड़ी प्यारी बात है सुफियान सौरी की, कि वो फरमाते थे जब उनके शागिर्द उनके साथ साथ चलते थे ना, तो वो फरमाते थे अगर मेरे गुनाहों की बदबू हो ना तो तुम सब मुझे छोड़ के भाग जाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने उस तहलुयुब है वो ढांप लेता है महबूब को, तो वो ढांप लेगा कयामत के दिन जिन गुनाहों को उसने माफ कर दिया होगा ना, वो लोगों को देखने भी नहीं देगा उनको, कि कोई देखे कि अच्छा। देखिए एक तो ना अल्लाह ताला ने माफ भी कर दिया, लेकिन सबको पता तो चल रहा है कि ये तो इसने किया था ना, इसको फिर माफी मिल गई, लेकिन इसने किया जैसे अब कोई मिसाल के तौर पे कोई जुर्म एक साबित हो गया है, लेकिन मसलन अदालत ने उसको माफ कर दिया, दुनिया में तो ऐसे नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला माफ कर दे किसी को, और लेकिन उसका जुर्म सबको पता चल रहा है, तो इसमें भी कितनी रुसवाई है ना, कितनी बेइज्जती है। तो अल्लाह ताला ऐसा है जो कवर कर देगा, बख्श के कवर भी कर देता है, और सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, जब भी एक सिफत के बाद दूसरी सिफत आती है ना तो उसको समझा करें इस तरह कि अल गफूर है और अल वदूद क्यों आया इसके बाद, गफूर रहीम क्यों नहीं आ गया, रहीम भी तो है ना, लेकिन गफूर अल वदूद आया यहाँ पे, और ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की सिफत है। कि देखें पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंसान जब माफ करते हैं तो कैसे माफ करते हैं, आप जब किसी को माफ कर देते हैं तो बड़ी एक तो मुश्किल से माफ करते हैं, शर्तें भी बांधते हैं, हम आइंदा के लिए तुम ऐसे कहोगे तो ये करोगे तो वो करोगे, तो अब मेरे पैर पड़ो, तो अब मेरे घर आओ, तो अब ऐसे करो, तो अब पहले तो तुम ये करो फिर उसके बाद माफ करेंगे, पहले तुम बताओ तुमने ऐसे क्यों किया था, बहुत सारी चीजें करते। अच्छा फिर अगर माफ कर ही देते हैं ना तो हमारा हौसला इतना छोटा होता है कि उसके बाद भी हम यही कहते रहते हैं, बस दिल से नहीं निकलती, माफ तो करती है दिल से नहीं निकलती, दिल से नहीं निकलती, ऐसे बात कहते रहते हैं। तो वो भी हम दिल से निकालना भी कोशिश भी करें तो तब भी कहीं कहीं हमें बस ऐसा होता रहता है कि वो ख्याल आ ही जाता है और लोगों को बताते रहते हैं मैसेज, मैंने इसको माफ तो कर दिया लेकिन पता है इसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया था। अल्लाह ताला ढांप देता, एक तो वो लोगों को बताएगा नहीं, और ऑन टॉप ऑफ इट वदूद वुद से, वुद मोहब्बत को कहते हैं, और बहुत ज्यादा मोहब्बत को लिए। तो अब ये दोनों नाम साथ क्यों आए कि अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाला है, माफ करके मोहब्बत भी करता है, अल्लाह हू अकबर, माफ भी करता है वो मोहब्बत भी करता है। माफ कर देना वो ही बड़ा मुश्किल काम है, और उससे आगे उसको जिसने गलत किया उसे मोहब्बत भी करना, ये तो बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह ताला ही कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाशी ने बहुत दुख दिया था जब हजरत हमजा को शहीद कर दिया था, तो वाशी जब माफी मांगने के लिए आ गए थे, इस्लाम कबूल कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, आपने फरमाया बताओ मेरे चचा को कैसे तुमने शहीद किया, तो जब उन्होंने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोए, दाढ़ी मुबारक तार हो गई आंसुओं से, फरमाया वाशी मेरे सामने ना बैठा करो, मुझे अपने मेरे सामने ना बैठा करो, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आ जाता था। तो आशी जो थे ना वो पीछे बैठते थे और छुप के बैठते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ना मेरे ऊपर पड़ जाए और उनको दुख ना हो। फिर तो माफ कर दिया था लेकिन मोहब्बत करना मुश्किल है। अल्लाह ताला कैसा हमारा रब है कि वो माफ करके फिर मोहब्बत भी करता है। तो फिर इंसान अगर माफी मांगने में देर करे तो बड़ी बदकिस्मती है, और इंसान अगर दलेर हो जाए इस बात पे कि कोई बात नहीं गुनाह कर लूंगा तो फिर माफी मांग, क्या पता कल को मौत आ जाए, क्या पता अल्लाह ताला माफी की तौफीक ही छीन ले, क्या पता उस गुनाह में पड़ने के बाद इंसान को वो गुनाह ही इतना हल्का लगने लगे कि वो माफी ही ना मांगने की तरफ आए, क्या पता मौका ही ना मिले, क्या पता वो भूल जाए। तो ऐसे अजीम रब के साथ कभी भी इंसान को नहीं ये सोचना चाहिए, अव्वल तो दलेर होके गुनाह करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंसान है, इंसान से गुनाह भी होते हैं, तो फिर फौरन पलटे वो तौबा की तरफ और ये समझे कि अल्लाह तू तो गफूर है, तू तो वदूद है, मोहब्बत करने वाला भी है, कहाँ से लाओगे आप कोई ऐसा जो ऐसा हो कि माफ भी करे और फिर मोहब्बत भी करे, कहाँ से ऐसा लाओगे, कोई जात ऐसी नहीं है, ऐसी कामिल नहीं है कोई जात, भुला भी दे सबको, शर्मिंदा भी ना करे, इंसल्ट भी ना करे लोगों को बता के, चर्चा भी ना करे गुनाहों का, बल्कि उनको ढांप भी दे और मोहब्बत भी करने लगे। जैसे एक बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा, अल्लाह ताला पर्दे में उसका हिसाब किताब लेंगे और उसको कहेंगे ये भी तूने किया, ये भी तूने किया, ये भी, वो कहेगा हाँ अल्लाह मैंने ये किया, सारे गुनाह गिनवा देगा, अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तुझे माफ कर दी, जैसे दुनिया में तेरे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ था, आज मैं तुझे माफ करता हूँ। वो निकलेगा तो लोगों के सामने अपने आमालनामे को दिखाएगा और खुश होगा, और लोगों को नहीं पता होगा कि इसके गुनाह भी थे, अल्लाह ताला ऐसे ढांप देगा उसको। जुल अर्शिल मजीद, वो जुल अर्श है, आप देखे जू बार बार आ रहा है ना, रात भी और जू भी वाला, क्या अर्श वाला, अल मजीद मजद से, ये मजीदू है, इसका मतलब है अर्श वाले की सिफत है, अगर मजीदी होता तो फिर अर्श की सिफत होती, क्योंकि सिफत मौसूफ एक ही एराब रखते, तो जुल अर्शी अल मजीदू, जो मजद कहते हैं बुजुर्गी को, और ये अल्लाह ताला की सिफत है, इसीलिए अल्लाह ताला के नाम में से अल मजीद है, इन्नका हमीदुम मजीद, हम दुरू शरीफ इसी पे खत्म करते हैं ना, तो उसी से जुल अर्श अल मजीद, तो मजीद वो जात है जो जलाल वाली, जबरूत वाली, अजमत वाली, किबरियाई वाली, कमाल दर्जे तक हो, जिसमें जिस जात में बुजुर्गी भी हो और जो बेहतरीन तारीफ के लायक भी हो और जो करीम भी हो और जिसकी अताएं और बख्शिशें बेशुमार हो, अपने बंदों पे नेमतों के जरिए बहुत ज्यादा एहसानात करने वाला वो मजीद होता है। तो वो अर्श वाला है, और अर्श अल्लाह ताला की सबसे अजीम मखलूक है। अर्श के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कर्ब की दुआ सिखाई है हमें, उसमें आता है ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम, कि ये अर्श जो है अजीम और करीम दो उसकी सिफात यहाँ में बयान की गई। ये दुआए कर्ब है, हर परेशानी हर कर्ब हर मुसीबत में ये दुआ काम आने वाली है, इसको दुआए कर्ब कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना है, और अर्श अल्लाह ताला के अजीम अर्श की बात है। तो अल्लाह ताला का अर्श बहुत अजीम शय है, बहुत बड़ी शय है अल्लाह ताला का अर्श। उसकी सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मखलूक है अल्लाह ताला की। और अर्श तक हम क्या बात कर सकते हैं, हम अर्श को तो समझ ही नहीं सकते कि कितना कितना बड़ा और अजीम होगा। उसको इस वक्त चार फरिश्ते उठाए, में कयामत के दिन आठ उठाए होंगे। तो मैं सिर्फ आपको एक बात बता देती हूँ, उससे ही आप अर्श के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अर्श तो नहीं लेकिन अर्श को उठाने वाले, ठीक है, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते की सिर्फ एक बात बताऊंगी आपको, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अर्श को जो फुट उठाने वाला एक फरिश्ता है, उसके कान की लौ से लेके, ये जहां पे आप अपनी बाली डालते हैं कान में, उससे लेके कंधे तक का फासला हमारा कितना है, एक बालिश्त भी नहीं है, ठीक है, सबसे छोटा फासला ये। इतना फासला 700 साल की मसाफत है, और आप देखें जमीन से पहला आसमान कितना है, 500 साल की मसाफत। इसका मतलब इससे भी ज्यादा, इससे भी 200 साल ऊपर, पहले आसमान से दूसरा भी 500 साल, दूसरे से तीसरा भी 500 साल, सोचे 700 साल की मसाफत। तो सिर्फ उसका ये डिस्टेंस है, तो वो पूरा कितना बड़ा होगा वो फरिश्ता। और वो एक नहीं, वो चार हैं जो अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं। आप सोच लें, अल्लाह ताला के अर्श के सामने उसकी कुर्सी इतनी छोटी है, इतनी छोटी है। अब कुर्सी जो, अब इससे अंदाजा करें कि जो कुर्सी जमीनों आसमान के मुकाबले में, जमीन और आसमान कुर्सी के मुकाबले में, ये कह सकते हैं हदीस में आता है, जमीन और आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे जैसे एक छल्ला सहरा में पड़ा हो, और कुर्सी इतनी छोटी है अर्श के मुकाबले में जैसे एक छल्ला सहरा में पड़ा हो। तो अल्लाह ताला का अर्श कितना अजीम होगा। तो वो अर्श वाला है, और अर्श तख्त को भी, अर्श तख्त के लिए भी आता है लफ्ज ना, अर्श फ़ाल लिमा युरीद, फ़ाल फाइल होता है और एक फाल होता है, फाल में मुबालगा और तकरार है, रेपिटेशन है। वो करने, जिसको हम कहते हैं ना कर गुजरने वाला, सिर्फ करने वाला नहीं कर गुजरने वाला है। लीमा युरीद, जो वो चाहता है, जो चाहे करे, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी पूछ नहीं सकता, कब चाहे कैसे चाहे। अब कोई इंसान जो है ना, ये कर लो, इनको सजा क्यों नहीं मिल रही, इनके पर पकड़ क्यों नहीं आ रही, अल्लाह ताला मदद क्यों नहीं कर रहा, आलो लिमा युरीद, वो जो चाहे करे। यानी अब उसको आपको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया इसमें मुबालगा है और रेपिटेशन है, अगेन एंड अगेन का माना है, वॉट एवर वेयर एवर विद हु एवर वो चाहे करें। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्हों जब बीमारी में थे, मरजुल मौत में, तो लोग सवाल करते थे किसी तबीब को आपने दिखाया, फरमाया हाँ दिखाया। तो लोग पूछते हैं ना, अच्छा फिर उसने क्या कहा, तो लोगों ने पूछा क्या क्या कहा फिर उसने, तो फरमाया उसने जवाब दिया इन्नी फ़ाल लिमा युरीद, कि मैं जो चाहे करूं, यानी अल्लाह मेरा तबीब है, वो जो चाहे करे। हल अता का हदीसुल जुनूद, क्या तुम्हारे पास खबर आई है लश्करों की, आई है आपके पास, जो फिरौन और समूद, फिरौन के और समूद के, इनके बड़े बड़े लश्कर थे, फिरौन के तो ऐसे लश्कर थे, आगे आप सूरह फजर में पढ़ेंगे, तो इतने बड़े लश्करों वालों की खबर आई है। यह जुनूद की खबर क्यों खास तौर पे बात की गई, क्योंकि अरबों के लिए ना लश्कर, वही अगर हमला आवर होने वाला होता था तो उनके पास कोई जराए नहीं थे जहां से जाकर पता करते, वो खबर आती थी कि एक लश्कर आ पहुंचा है, तो उनके लिए बहुत स्केरी बात होती थी कि कोई लश्कर ऊपर आ गया, खड़ा हो गया हमारे सर पे। तो उनकी पता है कितनी नफरी थी, कितने बड़े बड़े लश्कर थे फिरौन के और समूद के। यानी उनसे ही सीखो तुम, कुरैश मक्का को कहा जा रहा है, तुम देखो तो सही कि वो अपने आप को कितनी बड़ी चीज समझते थे, और वो बड़े काफी थे भी दुनिया में। अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में फरमाया है ना कि क्या तुम्हारे पास नहीं आए, क्या तुमने नहीं देखा, अलम यरौ कब अहलकना मिन कब्लिहिम मिन कर्न मक्कनाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम, तुमने नहीं देखा वो लोग जिनको हमने बसाया था इसी जमीन के ऊपर, वो तुमसे ज्यादा थे, उनके ऊपर हमने कितनी फरावानियां की हुई थी, फिर अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया, उनकी जगह और लोगों को ले आया, तो तुमने इनसे वो नहीं सीखा सबक। अल्लाह अकबर, बलिल्लदीन कफरू फी तकजीब, लेकिन जो काफिर है फी तकजीब, तकजीब में तो युकजीबून नहीं कहा गया यहाँ पे, जैसे पहले कहा गया था, फी तकजीब कहा गया, फी में यानी गर्क क्या उनके अंदर, अंदर है उसके अंदर, तकजीब के अंदर, जब कोई डूब गया हो किसी चीज के अंदर उसका निकलना मुश्किल होता है, वो बस ये ही झुटलाते रहना उनका, ये नहीं कि उनको समझ नहीं आई, बस उनकी अकड़ ऐसी है, वो झुटला झुटलाते रहे, तो पिछली कौमों के साथ ये गुजरा था, लेकिन तुम भी फिर यही करोगे। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाह ताला मिन वराइहिम, वरा पीछे को कहते हैं, लेकिन ये ऐसा वर्ड है जिसका ऑपोजिट माना भी है, अरबी में ऐसे अल्फाज हैं जिनके ऑपोजिट माने होते हैं, पीछे तो आगे भी, तो वो अल्लाह ताला उनके पीछे और आगे, यानी इसका मतलब हर तरफ से मुहीत अहाता किए हुए, जिसने पीछे और आगे से कर लिया तो फिर हर तरफ से, तुम अल्लाह ताला को ये ना समझो कि अल्लाह ताला को पता नहीं है, उसकी ताकत ऐसी है, उसने हर तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन ना जब किसी मुजरिम को कह दिया जाए तुम्हें घेर लिया गया, अब वो घर के अंदर बेशक बैठा हुआ है, तुम्हारे घर को घेरे में ले लिया गया, तो इसका मतलब तुम बच के नहीं जा सकते, ऐसे ही है जैसे एक मछली के लिए कांटा डाल दिया जाए, उसने कांटा उसके मुंह में, वो समझ रही मैं आजाद हूं, आजाद वो तब तक है जिस वक्त तक कांटा शिकारी खींच ना ले, मतलब वो बिल्कुल उसके यानी काबू में आ चुकी है, वो अपने आप को आजाद समझती, इसी तरह इन मुजरिमों का हाल है, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तो इनको घेरा हुआ है, घेरे में लिया हुआ है उनको, आगे से भी पीछे से भी हर तरफ से, यानी ये बच नहीं यानी सकते, तो फिर कहाँ जाएंगे, ये आज जो दुनिया में नजर आ रहा है ना, ऐसे लोगों को आप देखते हैं, आप सोचते हैं अल्लाह ताला ये इतनी इतना जुल्म कर रहे हैं, ऐसा ऐसे काम कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं होता, तो ये ना सोचे कि बस ये इनको छुट्टी मिली हुई है तो हमेशा की छुट्टी है, ये उसके उस वक्त के मुसलमानों के लिए जो कुरैश के जुल्म और सितम को सह रहे थे उनके लिए भी एक तसल्ली है, और आज तक एक तसल्ली है, जो जो ऐसे जरायम करेगा, जो जो ये जुल्म करेगा, जो शुरू से आप देख ले बात को, तो जिन्होंने चाहे वो असहाबुल उखदूद है, चाहे वो कुरैश मक्का है, चाहे वो आज के लोग हैं, जो भी तारीख में जितने भी आए ऐसे जालिम जिन्होंने ईमान वालों को फितने में डाला, और ये देखें आप एक बात यहाँ पे रह गई कि इन लदीना फतनु लदीना आमनू नहीं कहा गया, क्योंकि अल्लदीना आमनू तो वो हो सकते हैं जो वो फेल है ना, जो ईमान लाए, और मोमिन कहा, मोमिन वो होता है जो जब नाउन आ जाता है ना तो वो पक्की पक्की बात है, वो फिर यानी आप वो इससे फिरने वाले नहीं, ईमान उनके अंदर गढ़ चुका है, उनके लिए है कि जो ईमान में मजबूत है, आमनू वाले तो हो सकता है कि डावा डोल हो जाए, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को घेरे में लिया, बल हुआ कुरआन मजीद, बल्कि वो कुरआने मजीद है, आखिर में आके एक चीज बता दी गई कि किस तरह इंसान हिदायत पा सकता है, किस तरह इंसान इस्तकामत पा सकता है, किस तरह से ईमान वालों ये तसल्ली पा सकते हैं, किस तरह से वो लोग जो ये जरायम करने वाले हैं वो अगर है हिदायत की तरफ आना चाहें तो वो आ सकते हैं, बल हुआ कुरआन मजीद, जिसकी ये तकजीब कर रहे हैं, ये तो कुरआन है जो मजीद है, अब हम कहते हैं ना कुरान मजीद, तो ये कुरान में ही इसका नाम कुरान मजीद है, अल्लाह ताला ने दिया ये इसका नाम, हमने खुद नहीं रखा, कुरान मजीद, तो इसको कहना इस तरह दुरुस्त है, वही बात अल्लाह ताला भी अल मजीद है और कुरान भी मजीद है, और इसका माना मैं आपको बता चुकी, बहुत अजमत वाला, बहुत शान वाला, इसीलिए इस कुरान की अजमत को हमें भी पहचानना चाहिए, ना सिर्फ ये कि इसको हम वैसे अहमियत दें कि हम इसको सीखे समझे, क्योंकि ये बड़ी शान वाला है जो इसके साथ लग जाएगा। अब देखिए किसी ऑनरेबल, किसी बहुत बड़ा बादशाह है, कोई बहुत बड़ा वजीर है, कोई बड़ा दुनिया का कोई आला मकाम वाला है, उसके साथ लगना, उसको आपको अपने एक छोटी सी भी जॉब दे दे अपने, हाँ, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आप कहेंगे जी मुझे व्हाइट हाउस में जॉब मिली, आप चाहे व्हाइट हाउस में क्लर्क की जॉब हो, लेकिन आप कहते हैं मेरे जो बहुत एक टाइपिस्ट की जॉब है, एक छोटी सी यानी जॉब उसने वो छोटा सा ही काम दे दिया, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, आपके लिए कहना ही बहुत बड़ा होता है कि मेरी व्हाइट हाउस में जॉब है। सोचे जो अल्लाह ताला के इस कलाम के साथ, जाहिर है अल्लाह ताला अल-मजीद है, तो ये उसका कलाम है ना, उसका कलाम भी अल-मजीद है, वो भी शान वाला है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है, कोई इंसान का थोड़ी है, वो भी अजमत वाला है जैसे अल्लाह ताला अजमत वाला है। तो इसके साथ कोई जुड़ जाए तो उसकी शान भी कितनी बुलंद हो जाएगी, उसके लिए भी कितने फखर का बायस है कि मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं कह सकते, मगर मुझे यहाँ पर वक्त लगाने का मौका मिल गया, मेरी जिंदगी इसके साथ गुजर रही है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि मुझे मेरे रब ने इस काबिल समझ लिया कि मुझे यहाँ की जॉब दे दे। वो किसी को किसी काबिल समझता है तो अपने यहाँ रिक्रूट करता है ना, तो किसी को किसी काबिल समझा गया तो उसको कुरान करीम जैसी दौलत दे दी गई, फी लौह महफूज, ये लौहे महफूज पे है, वो लौहे महफूज जो अल्लाह ताला के पास सातवें आसमान पे है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके मुकर्रब फरिश्ते इसके पास होते हैं, और इसके बारे में आता है कि लौ सफेद मोती की है, इसका तूल आसमानों जमीन के बराबर है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख दिया, कुरान भी लिखा हुआ है, और जो कुछ होना था कयामत तक के लिए, जमीन और आसमान की तखलीक से भी 50,000 ईयर्स पहले अल्लाह ताला ने इसके अंदर लिख दिया सारों की किस्मतें। तो अल्लाह ताला ने लौहे महफूज को सफेद मोती से पैदा किया, इसके सफ़े सुर्ख याकूत की है, इसका कलम नूर है, और अल्लाह ताला हर दिन कई मरतबा इसको देखता है। यहां तक इस सूरत की तफसीर मुकम्मल हुई, देखते हैं इसकी तिलावत।
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح